समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात, आप सभी का अभिनंदन। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ ही आपका अपना कार्यक्रम आज सवेरे लेकर हम उपस्थित हैं। मैं हूं चंद्रिका जोशी, मेरे साथ हैं नवनीत सिंह। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
हेलो चंद्रिका एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। We bring you a forever exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein in the next half an hour, we will bring you the latest in national and international news, some metro city updates and a very special program called Kaleidoscope, as well as some historical information related to this day, that is the 5th of October.
जी, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मौसम थोड़ा सा बदल रहा है नवनीत। सुबह के वक्त थोड़ी सी ठंड की खुनक होने लगी है, तो जो भी सुबह सवेरे बाहर निकलें, वॉक के लिए जाएं, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, सुबह के ठंड से परहेज करें।
टेक प्रिकॉशंस, यस।
और अब नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट राजस्थान एंड मध्य प्रदेश टुडे। The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will lay the foundation stone and dedicate multiple development projects in various sectors like road, rail, aviation, health and higher education worth 5,000 crore rupees in Jodhpur. He will also address a public meeting. Mr. Modi will lay the foundation stone of important projects for strengthening the health infrastructure in Rajasthan. The projects include 350-bedded trauma center and critical care hospital block at All India Institute of Medical Sciences in Jodhpur and 7 critical care blocks under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, PMABHIM, to be developed across the state. The Prime Minister will also dedicate to the nation IIT Jodhpur campus. The state-of-the-art campus has been built at a cost of more than 1,135 crore rupees. For upgrading the infrastructure at Central University of Rajasthan, the Prime Minister will dedicate to the nation Central Instrumentation Laboratory, Staff Quarters and Yoga and Sports Sciences Building.
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी 200 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर करने को मंजूरी दे दी है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारे पर फैसले के लिए अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण द्वितीय के संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दे दी है।
जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अलोंग विद सिक्योरिटी फोर्सेज न्यूट्रलाइज टू टेररिस्ट लिंक्ड विद द प्रोस्क्राइब टेरर आउटफिट हिजबुल मुजाहिदीन इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर वैली यस्टरडे। एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक इनपुट रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट इन कुजार एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अ ज्वाइंट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज। During the search operation, as the joint search party approached towards the suspected spot, the hiding terrorist fired indiscriminately upon them, which was retaliated effectively, leading to an encounter. In the ensuing encounter, two terrorists linked with the Hizbul Mujahideen were killed, and their bodies were retrieved from the site of the encounter. The slain terrorists were involved in several terror crime cases. Incriminating material, arms and ammunition were also recovered from the site of encounter.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज बिहार के दौरे पर जाएंगे। वे पटना में पार्टी संस्थापक नेताओं में से एक कैलाश पति मिश्र की जयंती शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। श्री नड्डा पार्टी की बिहार इकाई के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि भाजपा अध्यक्ष एक दिन की यात्रा के दौरान अनेक बैठकों में शामिल होंगे। जयंती शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के बाद श्री नड्डा पार्टी की राज्य कोर समिति और भाजपा विधायकों की बैठक में शामिल होंगे। शताब्दी समारोह के सिलसिले में राज्य में 6 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
Gujarat government has announced Gujarat Renewable Energy Policy 2023. The policy was launched by Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel in Gandhinagar yesterday. The policy aims to attain 50% of the state's total power generation through renewable energy by 2030. The state aims to harness an estimated 36 gigawatt of solar and 143 gigawatt of wind capacity through this new policy. The policy will be applicable for the next 5 years.
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर के बसोहली पश्मीना और कलादी डेयरी उत्पाद से जुड़े बुनकरों उत्पादकों को जीआई टैग मिलने पर बधाई दी है। अपने ट्वीट में उपराज्यपाल ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए गर्व का पल है। उन्होंने प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि जीआई टैग मिलने से इससे जुड़े बुनकरों और उत्पादकों के परिवारों को भी उनका भी मनोबल बढ़ेगा। श्री सिन्हा ने निर्यात को और बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के दो गौरवशाली सांस्कृतिक और विरासत प्रतीकों से जुड़े हजारों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के प्रयास के लिए भारत सरकार, उत्पादक संघ, नाबार्ड, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य सभी हितधारकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
The ICC Men's ODI Cricket World Cup 2023 kicks off in Gujarat from today. The Narendra Modi Stadium in Ahmedabad is all set to host the opening match of the tournament between England and New Zealand this afternoon. The match will begin at 2 p.m. Indian Standard Time. Both the teams are finalists of the previous edition, with England being the defending champions. Nearly 3,500 police personnel have been deployed at the stadium in Motera area and other parts of Ahmedabad for the opening game. India will begin its campaign on Sunday against Australia at M.A. Chidambaram Stadium in Chennai. Our correspondent reports that Ahmedabad will host 5 World Cup matches, including India-Pakistan fixture on 14th of this month and the World Cup final on 19th of next month.
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली में उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में गिरफ्तार होने वाले श्री संजय सिंह पार्टी के तीसरे नेता हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्री संजय सिंह की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। और अब इससे पहले कि हम महानगरों की ओर बढ़ें, हमारे साथ स्टूडियो में हैं सिद्धार्थ सिंह, ताजा तरीन जानकारी लेकर एशियाई खेलों की।
बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका। चीन के हांगचो में 19वें एशियाई खेलों में भारत का शानदार सफर जारी है और आज खेल के 12वें दिन देश को कई और पदकों की उम्मीद है। आज तीरंदाजी की महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, परिणीति और अदिति की तिकड़ी ने हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्क्वाश में सिंगल्स फाइनल में सौरभ घोषाल और मिक्स फाइनल में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधु आज अपना दमखम दिखाएंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में चीन के साथ खेलेगी। बैडमिंटन में सिंगल्स में पीवी सिंधु और एचएस प्रणय और डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करेगी। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 12 पदक जीते। भारत 18 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य सहित 81 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
तो सिद्धार्थ, तो बड़ी खुशी की बात है कि 81 पदक भारत को अब तक मिल चुके हैं। आज भी उम्मीद की जा सकती है कि इसमें इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी।
बिल्कुल चंद्रिका, आज पदकों की उम्मीद है देश को और ये जैसा कि हमने कहा कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, तो खिलाड़ियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
जी, और अब आज सवेरे में कुछ प्रमुख महानगरों की ओर रुख करते हैं। नवनीत हमें बताएंगे चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के क्या ताजा समाचार।
यस चंद्रिका, लेट्स टेक आवर लिसनर्स ओवर टू चेन्नई फर्स्ट। Danish ambassador to India, Freddie Swain, has said that India has a lot of potential for generating alternative energy sources. Addressing a conference at Chennai yesterday, he said that around 1,970 small and medium-sized businesses on wind energy, which are sub-suppliers to Denmark, were situated at Chennai and other places in Tamil Nadu. He told that due to the advancement in wind energy technologies, alternative energy sources are the future of the world, and there was a need to ramp up the expertise and technology in India. Dinesh Jagdale, Joint Secretary in the Ministry of Renewable Energy, said that wind energy will play a crucial role in the green economy. He said that the governments of Denmark and UK are partners of India in the green economy and taking further the development of the alternative energy industry. International flight services at the Chennai International Airport were disrupted due to a technical glitch yesterday. The server problem affected 9 services and about 1,500 international passengers. The problem was fixed in the afternoon. Only international departure services were affected. International services to destinations including Colombo, Dubai and Bangkok were delayed. And moving over to Bengaluru, Bengaluru South MP Tejaswi Surya inspected the progress of the yellow line of the Bengaluru Metro connecting RV Road to Bommasandra. He instructed officials to address for early commencement of operations. Speaking to reporters after the inspection, Surya said that in 2014, Bengaluru had a metro line of just 7 kilometers and today it's expanded to 78 kilometers. There will be 3 interchange stations in the yellow line at Silk Board, RV Road and Jayadeva stations, enabling a commuter to transfer from the yellow line to pink, green and purple lines. And for some city updates from Hyderabad, Jubilee Hills Assembly constituency among the 15 segments in Hyderabad district has the highest number of electors of 3,75,430, while Charminar is on the lowest with 2,24,065. The elector rolls were published yesterday as per the schedule issued under second special summary revision of electoral rolls by the Election Commission of India, with reference to 1st of this month as qualifying date. The authorities have requested the voters of Hyderabad district to verify the names in the final electoral rolls available in the ECI website at https://voters.eci.gov.in or in the CEO's website at www.ceotelangana.nic.in or by downloading the Voters Helpline app. They can submit their claims and objections, if any, in Form 6, Form 7 and Form 8 under continuous updation of voters list. And that's all from these metros. Chandrika, over to you.
Ji. दिल्ली मुंबई और कोलकाता के समाचार जानेंगे लेकिन पहले नजर दिल्ली पर. दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आज से स्वास्थ्य मेला शुरू हो रहा है. इसका आयोजन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर कर रहा है. मेला 5 से 10 अक्टूबर तक चलेगा. गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि इस मेले में निःशुल्क नेत्र जांच, दंत रोग, कैंसर, ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी कई जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी. दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने राजधानी क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण रैपिडेक्स परियोजनाओं में देरी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया और उन्होंने इन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. यात्री सुविधा को और अत्याधुनिक बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने दिल्ली मेट्रो रेल मोबाइल ऐप का हिंदी भाषा में अनावरण किया है. यह एप्लीकेशन अब तक केवल अंग्रेजी भाषा में था. गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्य ने हिंदी एप्लीकेशन की शुरुआत की. और अब रुख करते हैं मुंबई का. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत पीड़ित किसानों के दावों को मंजूरी देते समय बीमा कंपनियों को अत्यधिक संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए हैं. कल मुंबई में इस संबंध में एक समीक्षा बैठक में श्री शिंदे ने कहा कि इस साल अगस्त में भारी बारिश के कारण कई किसानों को परेशानियां हुई और उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों को दावों का तेजी से भुगतान करना चाहिए और किसानों को राहत प्रदान करने में सरकार की मदद करनी चाहिए. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड राज्य भर में हेलीपैड बनाने और एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के लिए नोडल एजेंसी हो गई। मुंबई में कल एमएडीएस की 85वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे या मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग जैसे राजमार्गों का उपयोग करते समय किसी भी दुर्घटना की स्थिति में एयर एम्बुलेंस सेवा नागरिकों की मदद कर सकती है। मुख्यमंत्री ने शिरडी अमरावती और कराड़ हवाई अड्डों की प्रगति की भी समीक्षा की। भारतीय नौसेना की 10 सदस्यों की पर्वतारोहण टीम ने सिक्किम में 16,207 फीट ऊंचे गोईचाला दर्रे पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। 21 सितंबर को महाराष्ट्र के लोनावाला से रवाना किए गए इस अभियान से पहले टीम को एक व्यापक शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार टीम को चुनौतीपूर्ण मौसम से और उबड़ खाबड़ इलाके और भारी बारिश का सामना करना पड़ा। हालांकि टीम के दृढ़ संकल्प और एकजुट प्रयासों के कारण शिखर पर विजय हासिल की। भारतीय नौसेना ने नौसेना का ध्वज वहां पर फहराया। और अब कोलकाता की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले से ही 7 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है तथा एहतियात के तौर पर कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में लोगों की सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। राज्य के वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए तैनात हैं। आपदा में कोई जनहानि न हो इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोलकाता में कल रात से लगातार बारिश हो रही है जिससे सड़कों पर पानी भर गया है और यातायात की स्थिति धीमी है। इसके साथ ही सोमवार को दोनों बांधों से करीब 1,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार मौसम के मिजाज में बदलाव आने के साथ ही आगे पानी अधिक छोड़ना पड़ सकता है। यह है AIR FM गोल्ड। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे नवनीत और चंद्रिका के साथ। और अब मौसम की तरफ एक नजर डालते हैं। दिल्ली में आमतौर पर आज आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 34 डिग्री जा सकता है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है। तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।
Listeners, Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is also expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad will have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius. And now, listeners, it's time for our special program, Kaleidoscope, wherein we bring for you our unique and out-of-the-box stories from around the world. Today's edition is narrated by Abhishek Mukhopadhyay.
Hello and welcome to a brand new edition of Kaleidoscope. A committed group of baseball fans from Missouri recently accomplished an astounding milestone. They played baseball continuously for 100 hours, breaking the previous record. This impressive performance resulted from the dedication and passion for America's favorite sport. In addition to pushing them beyond their physical capabilities, this amazing accomplishment drew the entire community together to celebrate sportsmanship and cooperation. The game, which brought together 60 players from Kansas City and the surrounding area, USA, lasted an astounding 100 hours and 1 minute to break a Guinness World Record. Each side had 30 players alternating between the field and the campsites where players could eat and relax during breaks. The endless game record attempt, which began in North Kansas City's McKen Park and ended 100 hours and 1 minute later, set a new record for the longest marathon in baseball. The game began on August 31st at 8 a.m. and ran until September 4th at 12:01 p.m. The players had a camp next to the field where they could get some food and a well-earned power nap during the five-day event. The players' families who were present at every stage to provide support ran the camp. In addition, 42 umpires worked the game in teams of three during four-hour shifts.
Little boy in a baseball hat stands in the field with his ball and bat. Says, I am the greatest player of them all. Puts his bat on his shoulder and he tosses up his ball. And the ball goes up and the ball comes down. Swings his bat all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls.
After 350 years, Maratha Empire Kingdom ruler Chhatrapati Shivaji's famed Wagh Nak is set to return to India. A museum in Britain will reportedly give Chhatrapati Shivaji's Wagh Nak, also known as Tiger Claw, to India on loan for 3 years. He used the weapon to defeat Bijapur Sultanate's general Afzal Khan in 1659. As per the report, Maharashtra's Culture Minister Sudhir Munganthiwar has said that the Wagh Nak would be brought to Maharashtra from London's Victoria and Albert Museum in November. This year marks the 350th anniversary of the coronation of Chhatrapati Shivaji. The Tiger Claw weapon will be brought back from London for a 3-year exhibition to commemorate the occasion. According to the London's Victoria and Albert Museum, where the Wagh Nak is currently housed, the weapon belonged to James Grant Duff, 1789-1858, an officer of the East India Company, who was appointed resident of the then Satara state. The relic was given to Duff by the then Peshwa Prime Minister of the Maratha Empire. A bird, a plane, or just your Ola ride? Yes, you'd now be able to fly from one place to another when in New York City. Flying taxis may be coming to New York City sooner than you think. The futuristic fantasy of taxis taking over the skies above congested city streets came closer to reality in mid-September when Ohio Governor Mike DeWine announced a $500 million investment in a Dayton area production facility for air taxis. California-based Joby Aviation, which accepted $325 million in government incentives to open the 140-acre plant, is just one company racing to bring the eagerly anticipated electric vertical takeoff and landing vehicle to market to NYC as early as 2025. Joby Aviation is making an aircraft that fits a pilot and four passengers. It's powered by six electric motors. It will have a vertical takeoff and landing. Booking a ride would be as easy as other ride shares with just a few taps in an app, according to Joby Aviation. Engineers said the aircraft are quiet enough to blend in with everyday noise.
I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight.
That's all in this edition of Kaleidoscope. Look forward to hearing from you at duniarangbirangi10@gmail.com. Till then, keep listening to Akash Prani, FM Gold. Namaskar.
आज सवेरे में अब वक्त हुआ है इतिहास की ओर रुख करने का। आज है अक्टूबर महीने की 5वीं तारीख। हम बात करेंगे कौन सी घटनाएं आज के नाम दर्ज हैं और साथ ही कुछ खास व्यक्तित्व जो आज के दिन से जुड़े हैं उनके बारे में भी बात करें। तो घटनाओं का जिक्र करें तो 1921 में रेडियो पर प्रसारित होने वाली पहली श्रृंखला बनी द वर्ल्ड सीरीज और 1962 में बीटल्स की पहली एल्बम लव मी डू ब्रिटेन में रिलीज हुई। इसका जो गीत है ये रिकॉर्ड होने से कई साल पहले और बीटल्स के अस्तित्व में आने से भी पहले लिखा गया था। एक झलक सुनते हैं।
love you.
This legendary song was written by band members John Lennon and McCartney.
1970 में द पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस PBS की स्थापना हुई. पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अमरीकी लोक सेवा प्रसारक और गैर व्यावसायिक सेवा है. ये वर्जीनिया में स्थित है और फ्री टू एयर टेलीविजन नेटवर्क है. पीबीसी एक तरह से सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित गैर लाभकारी संगठन है जो शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है.
International Teachers Day is observed today. Inspired by India's Teachers Day celebration, UNESCO embraced this idea in 1994 and designated the 5th of October as World Teachers Day, recognizing the invaluable contributions of educators worldwide. And in 1962 today, the first film in the James Bond film series, Dr. No, had its world premiere. The British spy film was inspired from Ian Fleming's novel and starred Sean Connery.
और आज हम स्मरण करेंगे रानी दुर्गावती का, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ और मृत्यु 24 जून 1564 को हुई. गोंडवाना की शासक थी. भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में उनकी गिनती होती है. दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज कार्य संभाला उसकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने की है. आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी. रानी दुर्गावती ने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई. जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है. तो दुर्गावती अपने साहस, शौर्य और महान प्रशासक के रूप में जानी जाती हैं.
American businessman Steve Jobs, a pioneer of the personal computer era, who co-founded Apple and transformed it into one of the world's most successful companies, died today at the age of 56 in 2011. He revolutionized the computer, music and mobile communications industry with such devices as the Macintosh, iPod, iPhone and the iPad.
अब हम उन महान संगीतज्ञ का स्मरण करेंगे जिनका नाम है पंडित राम चतुर मल्लिक. इनका जन्म आज ही के दिन 5 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु 11 जनवरी 1990 को हुई. भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक थे. इन्होंने ध्रुपद धमार गायन शैली में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की. राम चतुर मलिक जी ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, मैथिली लोकगीतों के अनुपम गायक थे. पुरस्कारों की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन उपाधि और दिलीप से उनको सम्मानित किया गया. 1976 में फ्रांस की सरकार ने राम चतुर मलिक के ध्रुपद धमार के रिकॉर्ड को यूनेस्को प्रसारण के लिए चुना. एक शास्त्रीय गायक कलाकार के रूप में पंडित राम चतुर मलिक ने और भी कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए. 1949 में उन्हें आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के विशिष्ट कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया. 1953 में डॉ राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें बिहार संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप प्रदान की. 1957 में सुर श्रृंगार संसद द्वारा मानपत्र और ताम्रपत्र दिया गया. 1964 में बिहार के राज्यपाल ने ताम्रपत्र की उपाधि से विभूषित किया और उसी वर्ष संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला और इसके बाद उन्हें खैरागढ़ मध्य प्रदेश से डीलिट की उपाधि मिली. एक झलक आपके लिए लेकर आए हैं.
English actress Kate Winslet is celebrating her birthday today. She became an international star with the release of director James Cameron's legendary Titanic. Let's listen to a soundtrack.
I समाचार चलने से पहले आपको बताएं कि आज राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जा रहा है। हम चलेंगे, कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, लेकिन सुनते रहें AIR FM गोल्ड।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।